हेलो दोस्तों, आज है 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल दशमी, दशमी तिथि सुबह 9:12 तक है और उसके उपरांत फिर एकादशी लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। आज नवंबर महीने की शुरुआत भी होने जा रही है और नवंबर से लागू होने वाले नए नियम के बारे में भी अपडेट देखेंगे, क्या कुछ आज 1 तारीख से बदलने वाला है, पूरी जानकारियां देखने वाले हैं। प्यार भरा सा निवेदन दोस्तों आपसे ये है कि इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा और फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को एक बार शेयर का बटन आप जरूर दबाइए ताकि हमें सपोर्ट मिले। और आपका सपोर्ट रहेगा तो फिर हम हर रोज आपके लिए ऐसे ही ताजा अपडेट्स का वीडियो लेकर आते रहेंगे और हमें काम करने का और मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस की आलोचना को कर पीएम मोदी पर पलटवार किया। खड़गे ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि ये मेरा विचार है और मैं खुलकर बोलूंगा कि आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। और इधर खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति पर पूरे देश को जेलखाना बना देने वाली एक कांग्रेसी मानसिकता द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात करना कोई पहला अवसर नहीं है। वहीं आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग से जुड़े खड़गे के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि उन्हें संघ के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। साथ ही आपको बताएं, पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात पहुंचे और उन्होंने नर्मदा जिले के एकता नगर में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन हुआ। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया, कश्मीर को अलग संविधान में बांट दिया। कांग्रेस की गलती की आग में देश दशकों तक जलता रहा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को न केवल अपनी पार्टी और सत्ता बल्कि गुलाम मानसिकता अंग्रेजों से विरासत में मिली है। जब अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो वंदे मातरम राष्ट्र की एकता और एकजुटता की आवाज बना। अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की लेकिन कभी सफल नहीं हुए। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वह कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को हटा दिया। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने समाज को विभाजित किया और ब्रिटिश एजेंडे को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने संबोधन से पहले राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली और परेड में शामिल सभी टुकड़ियों का नेतृत्व महिला अफसरों ने किया। परेड में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीमा सुरक्षा बल समेत 16 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। ये अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इधर आप देखिए, एनएसए डोभाल ने कहा कि तानाशाही से देश कमजोर होते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल खराब गवर्नेंस के उदाहरण है। शासन राष्ट्र की सुरक्षा विकास का तंत्र है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने शुक्रवार को कहा, किसी राष्ट्र की असली ताकत उसकी सरकारों की ताकत में होती है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में भी हाल ही के शासन परिवर्तन खराब गवर्नेंस के उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जब सरकारें कमजोर, स्वार्थी या भ्रमित होती हैं तो परिणाम भी वैसा ही होता है। संस्थान राष्ट्र की रीढ़ होते हैं और जो लोग उन्हें बनाते और पोषित करते हैं वही राष्ट्र की नींव मजबूत करते हैं। डोभाल ने कहा कि महान साम्राज्यों, लोकतंत्रों और राज्य तंत्रों का पतन हमेशा गलत शासन से हुआ है। जब शासन तानाशाही हो जाता है और संस्थाएं कमजोर पड़ने लगती हैं तो देश पतन की ओर बढ़ता है। वहीं एनएसए डोभाल ने कहा कि अब शासन को नई परिस्थितियों से भी जूझना पड़ रहा है। सबसे बड़ा बदलाव आम आदमी की बढ़ती जागरूकता है और अब वह ज्यादा आकांक्षी है, उसकी उम्मीदें बढ़ी हैं और राज्य को जवाबदेह बनना होगा। इधर आप देखिए, बिहार चुनाव से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को एनडीए ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है, साथ ही महिलाओं को 2-2 लाख रुपए तक की मदद भी दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा गरीबों के लिए केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा का भी वादा किया गया है। वहीं मां जानकी के मंदिर को भी अगले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। एनडीए के संकल्प पत्र में जो महत्वपूर्ण वादे किए गए वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 50 लाख नए पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन समेत कई बड़े ऐलान किए गए। साथ ही आपको बताएं, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 विकेट से हार गई है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 126 रन का टारगेट 13.2 ओवर में 6 विकेट पर चेज कर लिया था। टॉस हारकर बैटिंग कर रही भारतीय टीम 18.4 ओवर में 125 रन पर ऑल आउट हो गई। इधर आप देखिए, चीन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब बिना योग्यता संवेदनशील विषयों पर बातचीत नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। दरअसल चीन ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नए नियम लागू किए हैं। संवेदनशील विषय जैसे मेडिसिन, कानून, शिक्षा और फाइनेंस जैसे विषय, इन पर अब पोस्ट करने के लिए आधिकारिक योग्यता होना जरूरी है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म को भी योग्यता जांचने के निर्देश दिए गए और इस नियम का मकसद है कि गलत जानकारी रोकी जाए। हालांकि इसे डिजिटल सेंसरशिप भी कहा जा रहा है। दरअसल चीन ने अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नए नियम लागू किए हैं और इसमें कहा गया कि सोशल मीडिया पर संवेदनशील विषयों जैसे मेडिसिन, कानून, शिक्षा या फाइनेंस पर जानकारी साझा करने वाले जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके पास अब आधिकारिक योग्यता होना जरूरी है। और इस तरह के जो नए नियम है वो चीन में 25 अक्टूबर से लागू भी हो चुके हैं। साथ ही आपको बताएं, पीएम नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा, 14,260 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। मुंबई के पवई में गुरुवार को आर स्टूडियो में 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बनाने वाले आरोपी के बारे में बुजुर्ग महिला मंगला पाटनकर ने कई बातें बताई हैं और वे अपनी पोती को ऑडिशन के लिए ले गई थी। मंगला ने कहा कि रोहित पूरे समय बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा था लेकिन उसे बहुत ड्रामा भी किया। दरअसल आपको बताएं, रोहित आर्या नाम के शख्स ने एक वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए बुलाकर 17 बच्चों को बंधक बना लिया था और फिर फिरौतियां मांगने की कोशिश की गई। सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल। सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की लिस्ट में जगह दी है। मैगजीन ने लिखा कि वांगचुक एक इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता है। पिछले महीने उन्हें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के प्रदर्शन के चलते गिरफ्तार किया गया था। मारुति ने 3 महीने में 5.5 लाख कारें बेची हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 43,290 करोड़ रुपए की कुल कमाई की और ये पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा है। इधर आप देखिए, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से फिर से जवाब मांगा है। कहा कि सभी मुख्य सचिव सो रहे हैं, हमारे आदेश का सम्मान नहीं, आने दीजिए, हम निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों से जुड़े केस में सुनवाई करते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। इधर आप देखिए, भारत और चीन बॉर्डर पर भारी बर्फबारी, सिक्किम में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मोन्था तूफान के असर से अभी कई राज्यों में बारिश के हालात भी बने हुए हैं। भारत चीन सीमा से लगे इलाकों में शुक्रवार को भी भारी बर्फबारी देखने को मिली। साथ ही काम की बड़ी खबर आप देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने व्हीकल की नो योर व्हीकल यानी KYV प्रक्रिया को आसान बना दिया है। नई गाइडलाइन के तहत यूजर को सिर्फ नंबर प्लेट और फास्टैग की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक अब कार, जीप और वैन के साइड फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इससे फास्टैग एक्टिव रखने और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। नई व्यवस्था में वाहन पोर्टल से गाड़ी की RC डिटेल अपने आप मिल जाएगी। यूजर को केवल वाहन का नंबर, चेसिस नंबर या मोबाइल नंबर डालना होगा और अगर एक ही मोबाइल नंबर पर कई गाड़ियां रजिस्टर्ड है तो यूजर खुद चुन सकेगा कि किस वाहन की KYV पूरी करनी है। सरकार ने स्पष्ट किया कि KYV पॉलिसी लागू होने से पहले जारी किए गए फास्टैग एक्टिव रहेंगे, इन्हें बंद नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में किसान महापंचायत किए हैं। किसान महापंचायत का आयोजन आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी वकीलों को नोटिस नहीं भेज सकती है, SP से परमिशन लेना जरूरी है। ED के वकीलों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजे गए थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश में कहा कि जांच एजेंसियां किसी भी वकील को तब तक समन नहीं कर सकती जब तक पुलिस अधीक्षक की लिखित मंजूरी ना हो। ये कदम वकील और मुवक्किल के बीच की गोपनीयता के अधिकार की रक्षा के लिए जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर में नॉर्मल से 173% ज्यादा बरसात हुई है। 4 और 5 तारीख को बर्फबारी के आसार भी है। ऊंचे क्षेत्रों में अब ठंड भी बढ़ने लगेगी। साथ ही आप देखिए, मोबाइल से बच्चों के दिमाग पर भी असर पड़ रहा है। हल्द्वानी में हर हफ्ते हॉस्पिटल पहुंच रहे बच्चे, डॉक्टरों ने कहा कि बच्चों को ज्यादा फोन ना दिखाएं। उत्तराखंड के साथ ही देश के सभी राज्यों में लगभग बच्चों में मोबाइल पर रील देखने और गेम खेलने का जो क्रेज है वो तेजी से बढ़ रहा है। कुछ बच्चों को तो मोबाइल स्क्रीन देखने की इतनी आदत और लत लग चुकी है, वो बिना मोबाइल देखे खाना तक नहीं खाते हैं। लेकिन मोबाइल फोन की यही लत अब बच्चों के मानसिक सेहत पर भी असर डालने लगी है। मनोचिकित्सक डॉक्टरों के मुताबिक रील और शॉर्ट्स वीडियो की लत बच्चों के मस्तिष्क को लगातार बदलती तस्वीरों का आदि बना रही है और इसका रिजल्ट नतीजे यह है कि वे किसी एक समय पर लंबे समय तक फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों के पढ़ाई पे भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है, याददाश्त पर भी बुरा असर पड़ रहा है। मोबाइल की लत बच्चों में फोकस की कमी और चिड़चिड़ापन जैसी आदतें भी बढ़ा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। केरल हाई कोर्ट में जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस MB स्नेहलता की खंडपीठ ने एक महिला की तलाक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि पति का बिना वजह पत्नी पर शक करना मानसिक क्रूरता का गंभीर रूप है और ये वैवाहिक जीवन को नरक बना सकता है। हाई कोर्ट ने महिला को तलाक की अनुमति दी है। राजस्थान के उदयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। उदयपुर में पुलिस ने 50 बीघा जमीन पर फैली करीब 30 करोड़ रुपए की अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश किया है। अवैध रूप से खेतों में 8,000 से अधिक गांजे के पौधे लहला रहे थे और इन्हें गुजरात और पंजाब में सप्लाई करने की तैयारियां हो रही थी। पुलिस कर्मियों ने शोभा यात्रा के बहाने दुर्गम जनजातीय इलाकों में पहुंचकर ये बड़ा भंडाफोड़ किया। 4 टीमों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने अमेरिका की ओर से भी हाल ही में किए गए सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है और इन हमलों में कथित तौर पर नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले जहाजों को निशाना बनाया गया था। कानून के दायरे में रहे अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रपति ट्रंप को अल्टीमेटम दिया है। साथ ही आप देखिए, ट्रंप सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने कंपनियों पर H-1B वीजा का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है और डिपार्टमेंट ने इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया। इसमें कहा गया कि कंपनियों H-1B वीजा का गलत इस्तेमाल कर अमेरिकी युवाओं का अमेरिकन ड्रीम चुराया और इन्होंने कम सैलरी वाले विदेशी कर्मचारियों को गलत तरीके से नौकरियां दी। वीडियो में राजनेताओं और नौकरशाहों को दोषी ठहराया गया जो कंपनियों को यह गड़बड़ी करने देते हैं। इसमें बताया गया कि H-1B वीजा होल्डर्स का 72% हिस्सा भारतीयों का है जबकि 12% चीनी है। वहीं देखिए आप, भारत और अमेरिका में 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। एडवांस ड्रोन और AI हथियारों पर रिसर्च में मदद मिलेगी। US नई टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक नया 10 साल का रक्षा डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट समझौता किया है और इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 10 सालों तक दोनों देश मिलकर अपनी सेनाओं, रक्षा उद्योग और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करेंगे और इसके तहत अमेरिका भारत से एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। ये समझौता 31 अक्टूबर को कुआलालंपुर यानी मलेशिया में हुआ था जहां दोनों देश एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल थे। डिजिटल अरेस्ट केस से जुड़ी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का CBI जांच पर विचार, कहा कि ये इंटरनेशनल क्राइम है, इंटरपोल UN की मदद लें। वहीं राज्यों से FIR की जानकारी भी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देश भर में बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को देने पर विचार कर रहा है। अदालत ने कहा कि पूरा मामला CBI को सौंपने से पहले वह राज्य सरकारों का पक्ष सुनेगी। अगली सुनवाई इस मामले में 3 नवंबर को है। साथ ही आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई है। शिमला और अन्य क्षेत्रों में इससे कोई जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं है। हिमाचल हाईकोर्ट की सुक्कू सरकार को फटकार, HRTC कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने पर मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा गया है। वहीं देखिए, अब एलन मस्क की स्टारलिंक ने भारत में भर्ती शुरू कर दी है। फाइनेंस और अकाउंटिंग की जॉब निकाली गई है। 2025 के अंत तक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की सेवाएं मिलने लगेगी। सभी जॉब फिलहाल बेंगलुरु के लिए है जो स्टारलिंक का मुख्य ऑपरेशन हब बनेगा। साथ ही आप देखिए, दिल्ली में सख्त हुए नियम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर से अब सिर्फ BS6 मानक वाले कमर्शियल गुड्स वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बताइए, आज 1 नवंबर से नए नियम भी लागू होने वाले हैं। बैंक से जुड़े कई नियमों में भी आज 1 नवंबर से बदलाव हो रहा है। बैंकिंग नियमों में बदलाव के तहत आप देखिए, 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग एक्ट में बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा और इसके तहत अब नॉमिनेशन से जुड़े नए नियम लागू होंगे। यानी हर बैंक ग्राहक अब एक नहीं बल्कि 4 लोगों को अपने बैंक खाते में नॉमिनी बना सकेंगे और बैंक कस्टमर किस नॉमिनी को अपनी संपत्ति या जो भी रुपए पैसे बैंक में पड़े हैं, कितना प्रतिशत हिस्सा किस नॉमिनी को देना है, ये भी तय कर पाएंगे। तो ये बैंक खाताधारकों के लिए अच्छा अपडेट है। इसके अलावा बैंक में लॉकर और सेफ कस्टडी के नियम भी बदले हैं। इसमें भी खाताधारक नॉमिनी को क्रमवार उल्लेख कर पाएंगे। 31 साल पुराने जो कानून है वो नॉमिनेशन को लेकर कैंसिल हो जाएंगे और नए नियम आज से लागू हो रहे हैं। बैंक खाताधारकों के लिए अच्छी सुविधा रहेगी। साथ ही वायु प्रदूषण पर सख्ती के तहत हरियाणा में भी 1 नवंबर से पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लग जाएंगे। केवल BS6 वाहनों को अनुमति रहेगी। आवश्यक सेवाओं में 2026 तक छूट दी गई है। ये नियम दिल्ली और हरियाणा के NCR जिलों में लागू होंगे। साथ ही उदय का भी बड़ा अपडेट आज से लागू हो रहा है। 1 नवंबर से आधार से जुड़े 3 नियम भी बदल जाएंगे। न्यू गाइडलाइन है, यानी अब आपका आधार अपडेट करना भी बहुत इजी हो जाएगा। 1 नवंबर 2025 से उदय आधार कार्ड से जुड़े कई बड़े बदलाव भी लागू कर रहा है। पहले क्या होता था कि नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर में कोई भी आपको करेक्शन कराना है, सुधार कराना है, तो इसके लिए आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था। लेकिन अब 1 नवंबर यानी आज से ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगी। उदय ने एक नया सिस्टम तैयार कर दिया है। उदय ने यह भी स्पष्ट किया कि हर पैन कार्ड धारक को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करवा लेना है और साथ ही अब बैंक और वित्तीय संस्थाओं में KYC कराना भी और आसान हो जाएगा। SBI कार्ड के न्यू रूल भी आज से लागू हो जाएंगे। 1 नवंबर से SBI बैंक के कार्ड यूजर्स के नियम भी बदल रहे हैं। SBI कार्ड के स्टेटमेंट में कहा गया कि खास करके एजुकेशन से जुड़े पेमेंट और वॉलेट लोड जैसे ट्रांजैक्शन पर अब चार्ज लगेगा। लेकिन राहत की बात यह रहेगी कि अगर आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करेंगे, जैसे उनके ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर कैंपस पर लगे हुए POS टर्मिनल से, तो कोई फीस नहीं लगेगी। बाकी 1 नवंबर से अगर आप थर्ड पार्टी ऐप जैसे एग्रीगेटर्स या पेमेंट ऐप से स्कूल, कॉलेज या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की फीस भरेंगे तो फिर ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% फीस लगेगी। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान में उदयपुर से एयर इंडिया एक्सप्रेस 1 नवंबर से उदयपुर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए भी सीधी उड़ानें शुरू करेगी और ऐसे में लेक सिटी के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस 1 नवंबर से अपने नए ऑपरेशन की शुरुआत करने जा रहा है। उदयपुर से दिल्ली और उदयपुर से बेंगलुरु के लिए रोजाना एक एक सीधी उड़ान शुरू करने का ऐलान हुआ है। इसके अलावा आपको बताएं, सबरीमाला में भक्तों के लिए भी वर्चुअल कतार बुकिंग आज 1 नवंबर शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। दर्शन के लिए स्लॉट sabarimalaonline.org वेबसाइट के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं। वहीं आप देखिए, केंद्र सरकार की एक शानदार पहल, माई भारत बना देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2 करोड़ युवा इससे जुड़ चुके हैं, यानी 2 करोड़ से भी ज्यादा युवा और 1,20,000 से ज्यादा पार्टनर संस्थाओं को एक साथ जोड़कर देश का यह सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना है। माई भारत इसका नाम है। यानी दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहां पर हमारे देश का हर युवा रजिस्टर कर सके, अपनी डिजिटल पहचान बना सके और अपने लिए मौके ढूंढ सके। माई भारत पोर्टल सरकार का एक ऐसा डिजिटल सेंटर है जो युवाओं को अलग अलग अवसरों से जुड़ने का, जोड़ने का अवसर देता है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, सऊदी अरब ने उमराह वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब एंट्री वीजा की वैधता 3 महीने से घटाकर सिर्फ 1 महीना कर दी गई है, जो वीजा जारी होने की तारीख से मान्य होगी। हालांकि सऊदी पहुंचने के बाद तीर्थ यात्री के ठहरने की अवधि पहले की तरह 3 महीने ही रहेगी। ये नियम अगले हफ्ते से प्रभावी होगा। इधर आप देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2026 के लिए चयनित यात्रियों को दूसरी किस्त जमा करने की तारीख 7 नवंबर तक बढ़ा दी है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, इथेनॉल जिसने लाखों जिंदगियां बचाई हैं, अब वो खुद सवालों के घेरे में भी है। हैंड सैनिटाइजर में जिसमें इथेनॉल होता है, अब इसको लेकर कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल खबरें भी चल रही हैं। यूरोप इसे कैंसर का खतरा बता रहा है, लेकिन भारत में इसे भविष्य का ईंधन भी बताया जा रहा है। इथेनॉल को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं। दरअसल यूरोप की एक खबर ने भारत में भी चिंताएं बढ़ाई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपियन यूनियन यानी ईयू जल्द ही इथेनॉल वाले उत्पादों पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है, और इसकी मेन वजह यह है कि कई वैज्ञानिक अध्ययनों में इथेनॉल को कैंसर से जुड़ा एक खतरा बताया गया है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं और अभी चर्चाएं हो रही है और खबरें भी बन रही हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, सीबीएसई ने स्कूलों की एकेडमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। सभी संबंध स्कूलों का स्कूल एकेडमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है। इधर आप देखिए, ईडी ने अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों पर बड़ा एक्शन लिया है। 4 राज्यों में कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया। हेल्थ इंश्योरेंस वालों के लिए राहत की खबर आई है, 2026 में प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। सरकार ने भी हाल ही में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को खत्म कर दिया है, यानी अब इस पर टैक्स नहीं लगेगा। और ऐसे में अगर अस्पतालों के रेट और इंश्योरेंस प्रीमियम दोनों स्थिर रहते हैं तो आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। रुपए को संभालने के लिए आरबीआई की ओर से इस हफ्ते काफी प्रयास भी किया गया है, ताकि रुपए को 88 के लेवल से नीचे रखा जा सके। करीब 3 महीने के बाद देश के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं आपको बताएं, नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स अपडेट किया है। देश भर में अब कुल 128,875 सीटें उपलब्ध हैं, जो कि पिछले साल से 11,350 अधिक हैं। ये नया सीट मैट्रिक्स आप एनएमसी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। डीजीसीए ने भी बड़ा अपडेट दिया है, अब सक्षम यात्रियों को एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर के लिए शुल्क देना होगा। डीजीसीए ने नए नियम जारी किए हैं, यानी इसके तहत अब जो यात्री दिव्यांग या कम गतिशीलता वाले नहीं है, उन्हें इस सेवा के लिए शुल्क देना होगा। एयरलाइंस को यह शुल्क अपनी वेबसाइट पर दिखाना होगा। वहीं दिव्यांग यात्रियों को यह सुविधा पहले की तरह फ्री रहेगी। साथ ही यूपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर है, संघ लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि वह दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए अपनी परीक्षाओं में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर लागू करेगा। इधर एक बड़ी खबर आई है, रिपोर्ट है भारतीय युवाओं में बढ़ रहा उद्यमिता का रुझान, लेकिन इस चीज की बड़ी चुनौती। बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक 35% से अधिक भारतीय छात्र स्टार्टअप शुरू करने में मेंटरशिप की कमी को सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। 22% ने फंडिंग की कमी बताई और 24% ने कानूनी मार्गदर्शन की कमी को मुख्य समस्या बताया है। साथ ही एक सर्वे हुआ दिल्ली एनसीआर में, जहरीली हवा का कहर आप देखिए, अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 75% घरों में कोविड जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। एम्स के बच्चों के डॉक्टर ने बताया कि पिछले कुछ सप्ताह में बच्चों में भी लगातार खांसी, गड़गड़ाहट, एलर्जी और ब्रोंकाइटिस के हमले बढ़े हैं। कई बच्चे आंखों में जलन, गले में खराश और सोने में दिक्कत से भी जूझ रहे हैं। साथ ही आप देखिए, 2 महीने में हुई सबसे तेज वृद्धि, दिल्ली में डेंगू के मामले 1,000 पार हो गए। मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीज भी बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के बाद जमा हुआ पानी, अपर्याप्त साफ सफाई और रोकथाम कार्यों में आई रुकावट इस बढ़ोतरी के मुख्य कारण है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना का कार्यकाल 1 साल बढ़ गया है, अब वे दिसंबर 2026 तक पद पर रहेंगे। इधर आप देखिए, बैंक खाताधारकों के लिए बहुत जरूरी अपडेट है। भारतीय स्टेट बैंक समेत कई सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने अपनी वेबसाइट का एड्रेस बदल दिया है, और इसके पीछे आपको मालूम होगा भी थोड़े दिनों पहले आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और अब सभी बैंकों की वेबसाइट के यूआरएल यानी जो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, उसके एड्रेस में बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक के खास निर्देश पर हुआ है। दरअसल आपको पता ही होगा, आरबीआई ने बैंकों को अपने नेट बैंकिंग वेबसाइट एड्रेस को 31 अक्टूबर 2025 से पहले स्पेशल इंटरनेट डोमेन यानी .bank.in पर ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे, और अब यही हो गया है। अब मान लीजिए आपका आईसीआईसीआई बैंक में खाता है, तो आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट कुछ इस तरह से रहेगी। एचडीएफसी में आपका खाता है तो फिर इस तरह से hdfc.bank.in। एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आप देखिए www.axis.bank.in। इसी तरह से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बैंक का भी एड्रेस बदल गया है, sbi.bank.in। तो ये स्पेशल इंटरनेट डोमेन पर बैंकों की वेबसाइट अब ट्रांसफर हो गई है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही आप देखिए, केरल सरकार ने भी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दे दिया है। यूजीसी, एआईसीटी और चिकित्सा शिक्षा योजनाओं के तहत शिक्षण कर्मचारियों का डीए 42% से 46% तक बढ़ गया है। पेंशन भोगियों के डीआर में भी इजाफा किया गया है, और ये बढ़ोतरी अक्टूबर 2025 से लागू होगी। व्हाट्सएप को लेकर भी एक नया सिक्योरिटी फीचर आया है, अब पास की से बिना पासवर्ड भी होगा चैट बैकअप। व्हाट्सएप ने नया पास की फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर अपने चैट बैकअप को फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन या फिर स्क्रीन लॉक से भी सुरक्षित रख सकेंगे। इधर आप देखिए, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से धान की खरीद होगी, बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। उत्तर प्रदेश के एडेड स्कूलों में शिक्षकों की भर्तियां होगी, 15 नवंबर से आवेदन करने का मौका मिलने वाला है। साथ ही उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ पराली एक्सचेंज प्रोग्राम, किसानों को फ्री जैविक खाद का तोहफा मिलेगा। पराली दो खाद लो, जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार की एक अभिनव योजना है जिसके तहत किसान अब अपनी पराली देकर मुफ्त में गोबर से बनी जैविक खाद पा सकेंगे। सरकार की ये योजना है। राजस्थान से बड़ी खबर आप देखिए, सांभर झील में फिर मर रहे प्रवासी पक्षी, फैला संक्रमण। जयपुर से मेडिकल टीम भी पहुंची। 6 साल पहले आपको बताया 18,000 पक्षियों की जाने गई थी, अब सांभर झील में 6 साल बाद फिर प्रवासी पक्षियों की जान जाने की खबरें आई हैं। झील के आसपास बड़ी संख्या में मृत पक्षी पाए गए, संक्रमित पक्षी भी तड़पते हुए मिले और इनकी हालत ऐसी थी कि ये उड़ नहीं पा रहे थे, अभी इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। बुधवार और गुरुवार को कुल 20 पक्षी मृत मिले और बड़ी संख्या में पक्षी जमीन पर तड़प रहे थे। जयपुर में टाइगर और लोयन सफारी अगले आदेश तक बंद। बारिश और रविवार को हुए हादसे के बाद वन विभाग ने फैसला लिया है। रविवार को टाइगर सफारी के दौरान पर्यटकों से भरी बस के कीचड़ में फंस जाने के बाद ये फैसला लिया गया और यहाँ एक टाइगर बस के पास आकर बैठ गया था। हरियाणा सरकार का पंचायतों को फिर झटका, रूरल डेवलपमेंट फंड में बदलाव किया है। निदेशालय से मंजूरी जरूरी होगी तभी पैसा रिलीज होगा। साथ ही आप देखिए, राजस्थान के जोधपुर से एक बड़ी खबर, बहू की सैलरी से ससुर को मिलेंगे 20,000 रुपए। पति की जगह बहू को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी लेकिन वो सास ससुर से अलग रहने लग गई और ऐसे में हाईकोर्ट ने बहू को अपनी सैलरी से 20,000 रुपए कटवाने पड़ेंगे, गुजारा करना पड़ेगा। अनुकंपा नियुक्ति योजना में परिवार शब्द को संकीर्ण तरीके से केवल विधवा के रूप में नहीं समझा जा सकता और इसमें वे सभी लोग शामिल है जो मृतक कर्मचारी पर निर्भर थे, जैसे माता पिता, पत्नी, बच्चे। पत्नी को अब बूढ़े सास ससुर को अपनी सैलरी से 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। और बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान में भी हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की घोषणा हुई थी। कहा था कि राजस्थान में यूनिफॉर्म को लेकर एक बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा, अब सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म होगी, टाई नहीं होगी। लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की इस घोषणा के बाद राजस्थान में यूनिफॉर्म को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि इस फैसले को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों और विपक्ष की तरफ से भी अब कई सवाल उठाए जा रहे हैं। मदन दिलावर ने कहा कि सिर्फ कहा ही नहीं है, इस पर आदेश भी जारी करेंगे ताकि बच्चों में जो हीन भावना होती है वह समाप्त हो जाए। गैर सरकारी और सरकारी स्कूलों के बच्चों की यूनिफॉर्म अब एक जैसी होगी। यूनिफॉर्म भी तय हो चुकी है, यूनिफॉर्म का रंग पैटर्न सब तय हो गया है। यूनिफॉर्म में टाई शामिल नहीं होगी, यूनिफॉर्म हल्के पीले और कथाई भूरे रंग की होगी, कुछ इस तरह से यूनिफॉर्म होगी। और अभी टीचर्स के लिए भी सोच रखा है लेकिन तय नहीं किया है और जल्द ही टीचर्स के लिए भी यूनिफॉर्म तय की जाएगी। तो राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। वहीं आप देखिए, जोधपुर में SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वोटिंग लिस्ट में 2 जगह नाम है तो फिर 1 हटवाना पड़ेगा। साथ ही आप देखिए, राजस्थान में जो लोग फर्जी फायदा उठा रहे हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून यानी NFSA के तहत रजिस्टर्ड ऐसे परिवार जो इस योजना के लिए पात्र ही नहीं है लेकिन फ्री का तोहफा उठा रहे हैं, उन्हें अब एक बार फिर इस योजना से हटने का मौका मिल रहा है। 31 दिसंबर तक सरकार ने अब नया समय दिया है और इस तारीख तक अगर कोई भी अपात्र रजिस्टर्ड व्यक्ति खुद योजना से नाम वापस नहीं लेते हैं तो फिर सरकार उनसे रिकवरी करेगी। तो 31 तारीख तक आप योजना से हट जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वरना फिर आपसे रिकवरी तय। मनरेगा EKYC की अंतिम तारीख 15 नवंबर तक बढ़ गई है, श्रमिकों के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा देखिए आप, राजस्थान में स्लीपर बसों की हड़ताल का उदयपुर में कोई खास असर देखने को नहीं मिला। बीकानेर और जोधपुर से कम बसें आई, अब 2 नवंबर के बाद और फैसला देखने को मिलेगा। जोधपुर में भी हड़ताल के बाद भी प्राइवेट बसें चलती दिखाई दी और इनमें कई जगह स्लीपर बसें भी शामिल थी। कुछ जगह ऑपरेटरों ने कहा कि रोजी रोटी कैसे चलाएंगे, ये तो आपको मालूम ही है कि जयपुर और जैसलमेर में भी बस हादसे हुए थे और परिवहन विभाग अब एक्शन मोड में है। विभाग की ओर से प्राइवेट बसों में नियमों के विरुद्ध किए गए बदलाव को लेकर अब कार्रवाइयां लगातार की जा रही हैं और इसी को लेकर राजस्थान में ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन की ओर से हड़ताल का ऐलान किया गया। जोधपुर में हड़ताल का मिला जुला असर नजर आया, ऑपरेटर्स हड़ताल के समर्थन में है लेकिन बसें फिर भी चलती हुई नजर आई। अब ताजा अपडेट यह आ रहा कि राजस्थान में 7,000 स्लीपर बसों का चक्का जाम, जयपुर में 1 नवंबर से अब बुकिंग ऑफिस भी बंद हो जाएंगे। तो ये प्राइवेट बसों की हड़ताल को लेकर अभी हालात इस तरह से चल रहे हैं। साथ ही आप देखिए, जुकाम और एलर्जी की दवाई का सैंपल फेल हो गया, बेचने पर रोक लगाई गई है। जयपुर में एक फार्मा कंपनी की जुकाम एलर्जी की दवाई अमानक मिली। खाटू श्याम जी जन्मोत्सव पर आ सकते हैं 20 लाख श्रद्धालु, जी हां, देव उठनी एकादशी पर सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर में बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 20 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान है, उस हिसाब से व्यवस्थाएं हो रही हैं। इधर आपको बताएं, कांग्रेस सरकार के समय की गई राजस्थान में LDC भर्ती प्रकरण में भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर गठित राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय जांच कमेटियों की रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश बालाघाट में 1 नवंबर से हेलमेट अनिवार्य हो जाएगा। मोबाइल खरीदी पर हेलमेट फ्री मिलेगा। पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम भी लागू होगा। साथ ही मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 3 दिन बिग इवेंट भी होंगे, उज्जैन के लिए हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा। इसके अलावा आपको बताएं, 1 नवंबर को मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो रहा है। मंगल के गोचर से भारत की आधुनिक सैन्य क्षमता बढ़ेगी। तकनीकी क्षेत्र में भी बदलाव होंगे। मंगल का राशि परिवर्तन अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में विशिष्ट स्थितियों को दर्शाएगा और मंगल का वृश्चिक राशि में होकर के 4 चतुर्थी दृष्टि से राहु को देखना दक्षिण पश्चिम की राजनीति को प्रभावित करेगा। साथ ही आप देखिए कर्मचारियों को भी मध्य प्रदेश में उम्मीद है, शायद स्थापना दिवस पर सीएम साहब बड़ी घोषणा कर सकते हैं। न्यायिक सेवा के बाद अब आईएएस आईपीएस आईएफएस को महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी हो गए हैं। साथ ही आप देखिए एमपीपीएससी ने वेबसाइट पर एक आवश्यक सूचना जारी की है और कहा कि परीक्षा या चयन में मदद के बदले कोई भी राशि मांगे तो शिकायत करें। वहीं खरगोन से जुड़ा अपडेट आप देखिए, कपास खरीदी के लिए 31 दिसंबर तक पंजीयन करा सकेंगे, 2 मार्च तारीख बढ़ाई। मध्य प्रदेश में 248,000 वाहनों की डुप्लीकेट एंट्री को खत्म किया गया, जिनकी अलग अलग आरटीओ में डुप्लीकेट एंट्री थी। साथ ही आप देखिए वाहनों की नई सीरीज MP09AX की नीलामी, इस बार ज्यादातर नंबर खाली रहे, 0001 नंबर बेस प्राइस पर 1 लाख रुपए में बिका। छत्तीसगढ़ से खबर देखिए, पदोन्नति में दिव्यांगजनों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, सभी विभागों को निर्देश जारी हुए हैं, 3% स्थान आरक्षित होंगे। लखनऊ में बिना लाइसेंस पालतू कुत्तों को पकड़ा, नगर निगम ने मालिकों से 22,000 रुपए जुर्माना भी वसूल किया, एक्शन लगातार जारी रहेगा। अयोध्या में अब ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मिलेगा, मैक्स हॉस्पिटल ने कैंसर की ओपीडी शुरू की है, परामर्श भी ले पाएंगे। वहीं झारखंड के 48 मजदूर ट्यूनिशिया में फंस गए, मदद की गुहार लगाई है। झारखंड में भी 2 नवंबर के बाद अब ठंड आगे बढ़ने वाली है, 1 नवंबर तक कुछ इलाकों में जिलों में बारिश के भी आसार हैं। पंजाब में आरटीओ दफ्तर से चालान काउंटर बंद कर दिए गए, सिर्फ ऑनलाइन भुगतान होगा, कर्मचारी केस नहीं लेंगे। वहीं पेंडिंग चालानों पर भी विचार किया जा रहा है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 465 अंक गिर कर 83,938 पर बंद हुआ है। निफ्टी में 155 अंकों की गिरावट रही और 25,722 पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव, 10 ग्राम सोना 1,151 रुपए बढ़कर 1,20,770 रुपए पर पहुंच गया। चांदी 2,342 रुपए बढ़कर 1,49,125 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 1 नवंबर शनिवार को मेष राशि वालों की परेशानियां सुलझ सकती हैं। वृष राशि के लोगों को करियर में नए मौके मिल सकते हैं। मिथुन राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। सिंह राशि वालों की प्रॉपर्टी के उलझे मामले सुलझेंगे। तुला राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। मकर राशि वालों को अप्रत्याशित फायदा मिल सकता है। मीन राशि वालों के आज लिए गए फैसले आने वाले दिनों में फायदेमंद रहेंगे और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरों में फिलहाल।
इस ऑडियो को पसंद करने के लिए और आगे भेजने के लिए 5 दबाएं। इसका ऑडियो आईडी नंबर आपको SMS कर दिया जाएगा।